आप सब को नमस्ते। आज हम भारतीय नववर्ष चैत्र प्रतिपदा और इस चैत्र प्रतिपदा के भारत में और भारत के बाहर अलग-अलग नामों से पालित किए जाने वाले, सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्टिवल उत्सव की चर्चा करेंगे। इस हफ्ते 25 मार्च को भारतीय नववर्ष विक्रमी संवत 2077 मीन्स विक्रमी संवत 2077, शालिवाहन संवत शक संवत 1942, युगादि कलियुग का आरंभ 5122 कली युगाब्द और सृष्टि संवत क्रिएशन को बने हुए आज को 1,972,949,121 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, चैत्र शुक्ल प्रतिपद के दिन भारत का जो भारतीय नववर्ष या वैदिक हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष शुरू होता है। बेसिकली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का, जब अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है उसे प्रतिपद, शुक्ल प्रतिपद कहते हैं। और वो हिंदू या भारतीय कैलेंडर के हिसाब से पहला दिन होता है। वैसे भारत में दो तरह के कैलेंडर चलते हैं, दोनों का समावेश है, मतलब दोनों अलग-अलग नहीं चलते। एक है सोलर कैलेंडर जो सौर वर्ष के रूप में जाना जाता है, दूसरा लूनर कैलेंडर जो कि चंद्र वर्ष के रूप में, मतलब जो चंद्रमा के बेस पर की गति के आधार पर मनाया जाता है। जितने आप तिथियां मनाते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी वगैरह वगैरह, वो सब लूनर कैलेंडर या चंद्र की गति के हिसाब से, जिसमें आपके अमावस्या की पूर्णिमा, अलग अलग तिथियां वो आते रहते हैं, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी जो संक्रांति के पर्व है, जितनी संक्रांतियां आप मनाते हैं, मकर संक्रांति, वैशाखी, और भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं, वो सौर पंचांग के अनुसार या सोलर कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। हमारे भारत में भी नया वर्ष का थोड़ा फर्क है 15 दिन का। जो लोग लूनर सिस्टम से चलते हैं वो चैत्र शुक्ल प्रतिपद को नए वर्ष के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग नाम से, उसकी चर्चा हम करेंगे। और सौर वर्ष के आधार पर, सोलर सिस्टम के आधार पर, इसके थोड़े दिन के बाद जो वैशाख मास की शुरुआत होगी, वैशाख के आरंभ में, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। विषुव संक्रांति के दिन उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो चैत्र प्रतिपद, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपद कहने से लोगों को समझ में कम आएगा, बहुत कम, क्योंकि हर राज्य में इसका अलग अलग नाम है। और सिर्फ भारत में नहीं, इवन भारत के बाहर भी, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूरोप तक, इन्हीं दिनों, मतलब आप कह सकते हैं मार्च और अप्रैल के बीच में, चैत्र और वैशाख, जिसकी भारत में भी है, दिनों नए साल सेलिब्रेट होते हैं। मतलब एक समय ऐसा था जहां ये सारे भूखंड में इन्हीं दिनों ही इस गुड़ी पाड़वा के रूप में जाना जाता है, कोंकणी सेलिब्रेटेड आज संबत्सर पाड़वो, राजस्थान में खास करके मारवाड़ क्षेत्र में इसको थापना के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसका नाम थापना है। सिंधी लोग इसको चेटीचंड के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर लोग इसको नवरेह या नवरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं जो कि पर्सियन न्यू ईयर है के रूप में, ईरान में भी उन्हीं दिनों सेलिब्रेट होता है। मणिपुर की जो मैतेई कैलेंडर है उसमें इसको चायरोवा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और साउथ के स्पेशली आंध्रा और कर्नाटक में इसे युगादि और उगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आंध्रा मीन्स आजकल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ध्यान रखिए ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, उगाड़ी, और उगाड़ी दूसरे जगह बोला जाता है युगादि, युगादि का ही अपभ्रंश, अपभ्रंश मतलब उससे बिगड़ा हुआ रूप बना उगाड़ी। ये युगादि शब्द आगे हम चर्चा करेंगे, इसको नोट रखिएगा। युग मतलब एज और आदि मतलब बिगिनिंग, आज के दिन युग का आरंभ भी हुआ। इसी तरह जो सोलर सिस्टम के आधार पर मनाते हैं, मतलब संक्रांति को ही ट्रांजिशन, तो वो प्रथम वर्ष के रूप में मानते हैं, प्रथम दिन के रूप में मास का, तो उनमें हमारे देश में तमिलनाडु में इसको पठंडू और बरुड़ा पिरप्पू, केरला में विशु, पंजाब और हरियाणा, मतलब जो अनडिवाइडेड पंजाब था, हिमाचल जम्मू हरियाणा दिल्ली के थोड़ा ये जो एरिया जो जो कल्चर है, तो उसमें वैशाखी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये वैशाख के प्रथम दिन जो कि संक्रांति के अनुसार सोलर सिस्टम के अनुसार जो सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह बिहार के मिथिला भाग में इसको पहिल वैशाख या जुदे शीतल कहते हैं, बंगाल में पहला वैशाख, असमीज न्यू ईयर में रोंगली बिहू या बोहाग बिहू, बिहू भी विशु, विशु भी वही विशु, विशु संक्रांति का नाम है, विशु संक्रांति जो जहां से सोलर कैलेंडर से वैशाख मास की शुरुआत होती है। उड़ीसा में विशुवा संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट होता है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जैसे मैंने अभी चर्चा की, अलग अलग भारत के बाहर भी अलग देशों में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट होता है। यही आप इसे इंडियन न्यू ईयर कहे, आप इसको हिंदू न्यू ईयर कहे, वैदिक न्यू ईयर कहे, या ओरिएंट प्राच्य ईस्टर्न न्यू ईयर कहे, जो भी आप नाम दे। तो देखते हैं अलग अलग देशों में बालीनीज न्यू ईयर जो इंडोनेशिया का हिंदू डोमिनेटेड छोटा सा आइलैंड है, इसको नेपी कहते हैं, इन्हीं दिनों सेलिब्रेट करते हैं। इसी इंडोनेशिया का दूसरा कल्चर है जावा, तो जावानीज न्यू ईयर को वो सातु सुरो कहते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आसपास सेलिब्रेट करते हैं। थाईलैंड में उसको संक्रान कहते हैं, संक्रान ध्यान रखिए, दे कॉल्ड इट संक्रान, SONGKRAN संक्रान, हिंदी में जिसको आप संक्रांति बोलते हो वो उसी का रिलेटेड वर्ड है, संस्कृत वर्ड है। लाओस में इसको पी माई लाओ और संक्रान बोलते हैं, वही संक्रान शब्द। कंबोडिया खमेर कल्चर में इसको चावल चनाम थमेई कहते हैं। ईरानियन कल्चर में जो कि जोरास्ट्रियन कल्चर का सेंटर था, जोरास्ट्रियन जो बहुत प्राचीन भारतीय वैदिक कल्चर से काफी सिमिलरिटी रखती थी, वो उसे नौरोज, ये पर्शियन शब्द भी नौरोज जो है, ये नौ जो है पर्शियन वर्ड है, ये भी संस्कृत वर्ड है, नव, नव मतलब न्यू, रोज मतलब डे, न्यू डे, दिस इज द न्यू डे, द न्यू ईयर फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, और वो पर्शियन कल्चर हमारे कश्मीर तक भी, कश्मीर में भी वही नौ रोज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये जो ईरानियन न्यू ईयर है या ज़ोरास्ट्रियन न्यू ईयर, इट हैज बीन सेलिब्रेटेड फॉर ओवर 3000 ईयर्स इन ऑल ओवर वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड कॉकेसस, द ब्लैक सी बेसिन एंड द बल्कन्स, ये सब जगह ये नौ रोज थोड़ा बहुत नाम में चेंज करके ये बोला जाता है। खाली इतना नहीं, इवन जो जो सोवियत रूस सब कंटिनेंट, जो रशियन सब कंटिनेंट में जो अलग अलग राज्य अभी बने, और ईस्टर्न यूरोप से, ईस्टर्न यूरोप तक, यहां से सेंट्रल एशिया से लेकर के जो देश हैं, जैसे अल्बेनिया में इसको नवरुजीत बोलते हैं, अजरबैजान वाले इसको नवरोज बोलते हैं, ध्यान रखिए नवरोज संस्कृत और पारसी वर्ड है, पोलिश जो पोलैंड है वो उसको नोइरोक बोलते हैं, स्लोबाकियन इसको नोइरोक बोलते हैं, कुर्दिश कल्चर जो कि आपके इराक, सीरिया, यमन, ये इस बेल्ट में, वो कुर्दिश कोई पर्टिकुलर राज्य नहीं है, पर ये अलग अलग देशों के में बटे हुए हैं, पर उनकी जो कल्चर है उसमें भी नवरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पर इन्हीं दिनों करते हैं। यही जो आप चैत्र प्रतिपदा भारतीय नववर्ष है, यही नववर्ष वहां सेलिब्रेट होता है, जैसे भारत में भी 15 दिन का आगे पीछे बहुत लोग करते हैं, तो इसी तरह वहां थोड़ा फर्क रहता है। किर्गिस्तान में इसको नूरोज बोलते हैं, ध्यान रखिए नव, नव मतलब नया, संस्कृत में यही शब्द चलता है। पास्तो जो आपके अफगानिस्तान और उसके रिलेटेड जो तजाक वगैरह एरिया है, वहां पास्तो भाषा बोली, पास्तो कल्चर है, वहां भी इसको नौरोज बोलते हैं। ताजिक वाले, ताजिक लोग इसको नौरोज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। टर्किश जो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में है, वो भी इसको नवरोज बोलते हैं। उज्बेकिस्तान में नवरोज के रूप में सेलिब्रेट होता है, और ऑलमोस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इंक्लूडिंग कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उइगुर, सब जगह इन्हीं मार्च और अप्रैल के मंथ में ये सेलिब्रेट होता है, ये नवरोज। तो इतना तो आप समझ गए कि ये जो इंडियन न्यू ईयर है, ये कितना सिग्निफिकेंस रखता है, न केवल भारतवासियों के लिए, अपितु इस प्लानेट का एक बहुत बड़ा भूभाग है, एक बहुत बड़ी एरिया है जहां ये नए साल, भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष सेलिब्रेशन के होते हैं। उनको पता नहीं है, इवन हमारे लोगों को भी पता नहीं क्यों, पर वो सेलिब्रेट होता है, बड़े धूमधाम से करते हैं। क्यों होता है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्यों हमने चैत्र प्रतिपदा या वैशाख संक्रांति, क्यों ये मार्च या अप्रैल जिसको स्प्रिंग सीजन कहते हैं, वसंत, ग्रीष्म, और ग्रीष्म कहते हैं समर और वसंत कहते हैं स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के बीच में, मिडिल ऑफ द, मिड ऑफ द स्प्रिंग एंड द बिगिनिंग प्रोसेस ऑफ द समर के बीच में क्यों न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, 3-4 चीजें आपको ध्यान रखना है। सो दिस न्यू ईयर, द नया दिन जो चैत्र प्रतिपदा है, दिस इज सेलिब्रेट, द न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कॉस्मस, द यूनिवर्स। ध्यान दी, यहीं से हम शुरू करेंगे, फिर आएंगे लोकल ट्रेडिशन तक। पहली चीज है कि ये नया वर्ष यूनिवर्स की बर्थडे सेलिब्रेशन है। इंडियन ट्रेडिशन में हमारी जो अपनी सिस्टम है, यूनिट ऑफ टाइम कैलकुलेशन का, इस यूनिवर्स को बने कितने साल हुआ, सोलर सिस्टम को बने कितने साल हुआ, प्लैनेट्स को बने कितने साल हुआ, लाइफ को आए इस प्लैनेट में कितने साल हुआ, ह्यूमन रेस को आए कितने साल हुआ, उसकी हमारी अपनी एक एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम है। इवन आज भी जो घरों में पूजा होती है, हिंदुओं के घर में हवन होता है, पूजा होती है, कोई भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, उसके शुरू में संकल्प कराते हैं पंडित जी, ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथमे चरणे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे पूरे तिथि नक्षत्र तक आता है। वो सब क्या चीज है? वो टाइम रिलेटेड होता रहता है। वैसे भारतीय परंपरा की जो टाइम यूनिट है उसके हिसाब से इस यूनिवर्स को बने हुए कितने साल हुआ, 1,972,949,121st सेलिब्रेशन है इस यूनिवर्स की क्रिएशन का। आप कहेंगे कैसे, आप ये इसका सिस्टम क्या है? जो वैदिक यूनिट ऑफ टाइम सिस्टम है एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए, हमारे जो यहां टाइम यूनिट है उसको सबसे जो छोटा पार्टिकल है, जो छोटी छोटा नंबर है, इसको हम परमाणु कहते हैं। उसकी सेकेंड के साथ कंपेयर करें तो वो मुश्किल है, इतना बड़ा नंबर है, 0.00013168724279834 सेकेंड। मैं आपको वहीं से काउंट करूंगा जहां सेकेंड आपको समझ में आएगा। परमाणु सबसे सटलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, और सबसे बड़ा यूनिट ऑफ टाइम क्या है? ब्रह्म वर्ष। एक दो मिनट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो परमाणु के बाद अणु, देन त्रसरेणु, हम धीरे धीरे बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं। वेद, लावा, लव, निमेश, क्षण। क्षण का मैं टाइम आपको थोड़ा मॉडर्न टाइम के साथ कंपेयर कर सकता हूं। क्षण होता है 1.280 सेकेंड, उसे पहले का मुश्किल है आपको याद रखना। फिर काष्ठा जो कि 6 सेकेंड के बराबर होता है, एक लघु जो कि 96 सेकेंड के बराबर होता है, एक नाड़िका जो 1.440 सेकेंड के बराबर होता है, मुहूर्त जो 2000 जो कि करीब 48 मिनट्स के बराबर होता है, देन प्रहर जो 3 घंटे का होता है, और 8 प्रहर में मतलब 24 घंटे में एक अहोरात्र, अहोरात्र मतलब डे नाइट। फिर पक्ष, पक्ष मतलब हाफ मंथ, जो कि 15 अहोरात्र है, 15 डे नाइट है। देन मास, 1 मंथ, जो कि 2 क्वार्टर्स का कॉम्बिनेशन है, 2 पक्ष का, जो 30 डेज का होता है। फिर एक ऋतु, ऋतु सीजन, जिसमें 6 मास, 6 मंथ्स की एक यूनिट होता है। देन अयन, सॉरी ऋतु, 2 मास का, सॉरी 2 महीने का एक यूनिट को एक ऋतु कहते हैं, इसको आप अंग्रेजी में सीजन कहते हैं। 6 सीजन से भारतीय टाइम यूनिट में षड ऋतु उसको कहते हैं, 6 ऋतु हैं। फिर आता है अयन, 2 अयन मतलब 6 मंथ्स का एक यूनिट, 6 माह का, 6 मासों का एक यूनिट का नाम है एक अयन। 2 अयन है, उत्तरायन और दक्षिणायन। अब सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल है मकर संक्रांति, जहां आप उत्तरायण को सेलिब्रेट करते हैं, द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। किसी के लिए फर्स्ट हाफ है, किसी के लिए सेकेंड हाफ, डजंट मैटर, मतलब एक हाफ का सेलिब्रेशन होता है उत्तरायण। और 2 अयन या 2 हाफ ईयर का एक यूनिट है 1 ईयर, एक वर्ष। वर्ष को हमारे यहां संवत्सर, वर्ष, सम, अनेक नामों से जाना जाता है। फिर 432,000 वर्ष मतलब ईयर्स 432,000 ईयर्स की एक यूनिट का नाम है कलियुग, 864,000 ईयर्स की एक यूनिट मतलब 864,000 वर्षों का एक यूनिट का नाम है द्वापर, 12,96,000 अंग्रेजी में 1,296,000 ईयर्स का एक यूनिट का नाम है त्रेता, 17,28,000 एक यूनिट का नाम है सत्ययुग। ये चारों को मिला दें, ये चार युगों की कंबाइन कर दे तो एक यूनिट बनता है, उसको कहते हैं महायुग। फिर 71 महायुगों का कॉम्बिनेशन का जो एक यूनिट है उसे हम कहते हैं एक मन्वंतर, 14 मन्वंतर है, 13 मन्वंतराज का कॉम्बिनेशन से एक यूनिट बनता है जिसका नाम है कल्प। और एक कल टू कल्प आज इक्वल टू वन ब्रह्म डे नाइट, ब्रह्म अहोरात्र, मतलब एक कल्प इक्वल इज वन ब्रह्म डे, एक यूनिट का नाम है ब्रह्म अहो ब्रह्म दिन, और इसी तरह ब्रह्म रात्रि एक यूनिट जिसको कहते हैं एक कल्प। तो दो कल्प इक्वल टू वन ब्रह्म डे नाइट 24 घंटे। नेचुरली 720 कल्पों में एक ब्रह्म वर्ष और 100 ब्रह्म वर्ष इज द लाइफ स्पैन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि वैदिक हिंदू ट्रेडिशन में हर कुछ साइक्लिक मोड में होता है, जन्म मृत्यु क्रिएशन डिसोल्यूशन सृष्टि और प्रलय, ये हमेशा साइक्लिक मोड में होते हैं। ऐसा नहीं कि This is the only universe and after that there will be no universe, before that there was no universe, ऐसा नहीं। ऐसे हमारे लाइफ में साइक्लिक मोड में चलता है, जन्म मृत्यु, इसी तरह यूनिवर्स भी इसी तरह चलता है। तो 100 ब्रह्म ईयर एक यूनिट का नाम है जो कि इस यूनिवर्स का लाइफ स्पैन है। और जब ये यूनिवर्स प्रलय की स्थिति में जाता है, ये संसार, ये संपूर्ण विश्व कॉस्मस जब प्रलय के स्टेज में जाता है, वो द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन, उसमें भी वो 100 ब्रह्म वर्ष तक उसी स्टेज में रहता है। तो आप कह सकते हैं तो 200 ब्रह्म वर्ष की एक पीरियड होता है यूनिवर्स का, क्रिएशन और डिसोल्यूशन का, सृष्टि और प्रलय का। सृष्टि की ये जो सृष्टि होती है जिसको आज हम जहां एंजॉय करते हैं, हम भी पैदा हुए हैं एंजॉय करते हैं, प्लैनेट्स से सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, ये सब जो चीजें हम यूनिवर्स करते हैं, ये कैसे बनता है? तो नेचुरली जो हमारे धर्मशास्त्रों में इसका जो वर्णन है ऑलमोस्ट वही सेम जो आजकल जो कॉस्मोलॉजिस्ट बात करते हैं, कैसे बिग बैंग से द यूनिवर्स बिगिंस फ्रॉम ए पॉइंट विथ ए बैंग एंड एंड्स इन ए पॉइंट विथ ए क्रंच एंड द ड्यूरेशन इज कॉल्ड वन ब्रह्म वर्ष और 100 कल्पाच और 100 ब्रह्म दिवस आज। तो उससे पहले वो हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे भूतस्य जात पतिरेका आसीत, इट वाज इन द प्रोसेस, हिरण्यगर्भ प्रोसेस में जो क्रिएशन होता है धीरे 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 आगे बढ़ता है। तो उस यूनिवर्स को बने कितने साल हुआ? 1,972,949,121 ईयर्स। ये चैत्र प्रतिपदा जो भारतीय नववर्ष है वो उसी का सेलिब्रेशन की कंटिन्यूटी है, इस यूनिवर्स को, विश्व की जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट करने का नया वर्ष। आगे आते और इस भारत भूमि में या इस इंडियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होने वाले वो सारे कल्चर में जितने भी कोई अच्छी घटना हुई है, जैसे कि राजा लोगों ने अपना राज्याभिषेक किया। मोस्ट ऑफ राजा इन्हीं दिनों इसी दिन राज्याभिषेक करते थे। ये इसीलिए ये जो चैत्र प्रतिपद है ये श्री राम का राज्याभिषेक का भी सेलिब्रेशन है, द करोनेशन डे ऑफ लॉर्ड राम, करोनेशन डे ऑफ युधिष्ठिर, जो कलियुग में युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक है। तो ये और ये चैत्र प्रतिपदा को भी कली युगाब्द, इसको भी युगाब्द मानते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बहुत सारे हिस्से में इसका नाम है उगाड़ी और कहीं इसका नाम है युगादि। सेलिब्रेशन सब जगह अलग, अपने अपने जो रीजनल कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से होता है। और नाम भी अपने अपने हिसाब से होता है। वो युगादि, उगाडि क्या चीज है? उगाडि का मतलब युगादि। युगादि का क्या मतलब है? द फर्स्ट डे ऑफ युग, कली युग का फर्स्ट डे है। तो कली युग को बने कितने साल हुआ? 5122 साल हुआ आज। मतलब आज मतलब 25 तारीख को हमने सेलिब्रेट किया, आज तो 29th मार्च है, तो 25th मार्च को, कहीं कहीं 24th को है, जो भी अलग अलग थोड़ी बहुत फर्क है देश और स्थान के कारण। चैत्र प्रतिपद कलियुग को बने हुए 5122 साल हुआ महाभारत युद्ध के बाद। उसके बाद जो भी पांडव वंश में राजा युधिष्ठिर राजा राजा बने, उसके बाद परीक्षित जन्मेजय, वो संधि काल होता है, उसके बाद कलियुग आरंभ हुआ। तो कलियुग को सिर्फ 5122 साल हुआ है।